તારીખ 20/9/1991 શ્રી સમયસાર ગાથા 181-183 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 38 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
ધર્મ સ્વયં પવિત્ર સ્વરૂપ હોને હે, અન્ય દ્રવ્ય ભાવ કી મિલાવટ ઇસમેં નહીં હૈ, ઇસલિયે શુદ્ધ પરિણામ સ્વરૂપ હૈ. પર પદાર્થ કે પ્રતિ મમત્વ કા ત્યાગ હોતા હૈ, या पर पदार्थ में ममत्व भाव नहीं होता है, इसलिए पर पदार्थ के ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती, उसी को त्याग कहने में आता है. उत्तम प्रकार से मैंने सम्यक प्रकार से इस तरह त्याग होता है. मूल में त्याग कहाँ से शुरू होता है इसका विचार करें तो अपनी आत्मा में अध्यास का त्याग होना ही त्याग है. प्रथम त्याग किसको कहते हैं? अध्यास मैंने ब्रह्म भाव अज्ञान, पर पदार्थ मेरे हैं, मेरे में राग भी है, ऐसा जो अध्यास है उस अध्यास का नाश होना त्याग होना, उसी को ही श्री जी ने त्याग कहते हैं. ऐसी परिभाषा श्रीमद् जी ने की है. तो ऐसा त्याग होने से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है और बाद में विशेष स्थिरता मुनि दशा में आती है. किसी भी कुटुंब परिवार आदि पूर्व कर्म के जितने भी उदयमान संयोग होते हैं उसमें ममत्व भाव छूट जाता है. ममत्व भाव होता ही नहीं और उनके साथ व्यवहारिक प्रवृत्ति भी करने का असंभव हो जाता है. तब ये प्रवृत्ति का अभाव होने को त्याग कहने में आता है. यहाँ पर पद्मनंदी पंचविंशति में से एक श्लोक लिया है. व्याख्याया क्रियते श्रुतस्य यतये महिहते पुस्तकम् स्थानम संयम साधनादिकमपि प्रत्या सदाचारिणा सत्यागो पुरादि निर्ममतया नो किंचना स्तेयते न किंचन अन्यमिदं च संतिहरो धर्मसंस्रता सम्मतः. सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना. देखो त्याग में ऐसी बात लिया है. सम्यक प्रकार से श्रुत का व्याख्यान करना वो त्याग धर्म में आता है. क्या पद्मनंदी लेते हैं? और मुनि वगैरह दूसरे त्यागियों को शास्त्र देना, पुस्तक देना, स्थान देना, पीछे कमंडल आदि संयम के साधन देना, ऐसे दान को भी धर्मात्माओं को सम्यक दर्शन पूर्वक जो परिणाम होते हैं उसको उत्तम त्याग धर्म कहने में आता है. मूल में मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ये जगत में मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा सम्यक ज्ञान पूर्वक जो भी निकटवर्ती संयोग शरीर आदि है उसमें ममत्व का अभाव हो जाना, ममत्व का त्याग हो जाना और शुद्ध स्वरूप में लीनता बढ़ जाना, स्थिरता बढ़ जाना, ऐसे चारित्र भाव को त्याग कहने में आया है। मुख्यतया मुनियों का चारित्र धर्म का ये विषय है। मुमुक्षुओं को भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार परिणाम होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस धर्म में उत्तम आकिंचन धर्म भी आ जाता है, ऐसा करके गुरुदेव ने थोड़ा व्याख्यान किया है। और ऐसा नौवां दिन है, उत्तम आकिंचन धर्म कहने में आता है। आकिंचन का मतलब क्या है? आकांक्षा नहीं होनी, दूसरे पदार्थ में ममत्व का भाव नहीं होना भी इसमें समाविष्ट हो जाता है। ऐसे त्याग के विषय में संक्षिप्त व्याख्यान है। चलता अधिकार है, समय सार संवर अधिकार 181-82-83 का था। दूसरा पैराग्राफ में आकाश का दृष्टांत हो गया है। उस दृष्टांत अनुसार आचार्य महाराज सिद्धांत को बताते हैं। सामान्यतया शास्त्र स्वाध्याय में जो भी आगम का स्वाध्याय करने में आता है, उसमें जो भी वचन है उनका अर्थ समझने का सामान्यतया बनता है। विशेषतया जो वचन है उस वचन को सीधा ही परिणमन से हम परिणमन में इस बात को ले जाएं तो स्वाध्याय में जो वचन में भाव रहे हैं उसी भाव को ग्रहण करने में बहुत अनुकूलता हो जाती है। स्वाध्याय पद्धति का ये विषय है। सिर्फ वचनों का अर्थ होना इतना ही नहीं रह करके वचन का जो वाच्य है उस वाच्य तक पहुंचने के लिए इस वचन अनुसार हमारा परिणाम परिणमन कैसे होवे, वहां तक इस बात को ले जाना चाहिए। किस तरह वो, यहां से अपन इस बात का थोड़ा गहराई से विचार करेंगे कि जैसे कि आचार्य महाराज कहते हैं कि उस प्रकार जब एक ही ज्ञान में ज्ञान को अपनी बुद्धि में स्थाप करके ज्ञान का आधार आधेय भाव विचारने में आता है, तब ज्ञान को बाकी के सभी अन्य द्रव्य में आरोपण करने का निरोध ही होने से बुद्धि में ज्ञान को भिन्न आधार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है। सिर्फ हमको शब्दार्थ से संतुष्ट नहीं होना है, हमारा जो ज्ञान परिणमन चल रहा है उस परिणमन को हमें देखना है के उसको आधार कौन कौन किसका है, हमारे ज्ञान पर्याय को किसका आधार है? आचार्य महाराज ऐसा कहते हैं कि तुम्हारे ज्ञान परिणमन को भी किसी का आधार नहीं है, तुमने जो मान रखा है वो गलती हुई है। ज्ञान मैंने आत्मा, आत्मा को दूसरा आधार की कोई अपेक्षा नहीं है। अनादि से आत्मा आधार बुद्धि में दुख भोग रहा है, शरीर का आधार, खाने पीने हवा पानी खुराक का आधार, और इसके लिए जो भी करना पड़े उस सभी परिस्थिति का आधार, उतने उतने पर पदार्थ के आधार लेना पड़ता है। एक अभिप्राय में पर के आधार बुद्धि आ गई, स्वयं की स्वतंत्र निरपेक्ष निरालंबन पदार्थ की स्वरूप की आधार बुद्धि नहीं होने से इतने इतने पदार्थ के आधार बुद्धि जीव संसार में लेता है तो उसको बहुत दुख भोगने का होता है। हमारा सुख का आधार हम स्वयं ही हैं। हमारे सुख के लिए हमें किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमारे आत्मा में अनंत 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 बेहद सुख भरा है। ऐसे स्वरूप सुख का विश्वास आए बिना, इसकी प्रतीति हुए बिना, अनादि से जो पर में और राग में सुख है ये परिणमन को मिटा नहीं सकेंगे। और उस परिणमन में कितना दुख भोगने का अवसर आएगा उसका भी अंत नहीं है, अनंत दुख भोगना पड़ता है। तो जिसको सभी प्रकार के दुख से छूटने की अभिलाषा है उनको सबसे पहले आचार्य महाराज ने जो यह प्रयोग दिया है यह प्रयोग से अपना काम शुरू करना होगा। देखते जाओ कि अपने ज्ञान में उत्पन्न होने का क्या कारण है, किस आधार से हमारा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, कि बिना किसी अवलंबन से, बिना किसी आधार से, बिना किसी अपेक्षा से स्वतः ही स्वयं हमारी ज्ञान में उत्पत्ति हो ही रही है और निरंतर जब हो रही है इस प्रकार से तो हमारी सामर्थ्य का भी इसे पता चलता है। किसी भी काम करने में साधन की आवश्यकता पड़ती है, शास्त्र पढ़ना है तो भी शास्त्र चाहिए, और पढ़ना है तो चक्षु इंद्रिय आदि का भी उसमें आधार चाहिए। लेकिन ज्ञान को उत्पन्न होने में न ग्रंथ का आधार है न इंद्रियों का भी आधार है, आधार नहीं है, ऐसी बात है। जिसको स्वयं ज्ञान में सुनने का, पढ़ने का और विचार करने की शक्ति स्वयं है, इंद्रियों के कारण नहीं है, स्वयं ऐसी स्थिति जिसको प्राप्त है, उसको ये श्रुत ज्ञान के माध्यम से पता चलता है कि ज्ञान ज्ञान में स्वतंत्र है, किसी का आधार की उसके अपेक्षा नहीं है। और जब ऐसा देखने से मालूम पड़ता है, विचारने से मालूम पड़ता नहीं है, न्याय से मालूम पड़ता नहीं है, लेकिन देखने से मालूम पड़ता है या अपने परिणमन से मालूम पड़ता है या अनुभव अंश से मालूम पड़ता है तब विश्वास आता है इस बात का। और जब विश्वास आता है तो भिन्न आधार की अपेक्षा उत्पन्न नहीं होती। मुझे किसी का आधार मिले तो मैं जिंदा रहूंगा, ये बात भी नहीं है। जिंदा रहने के लिए दाना पानी का तो आधार नहीं, शरीर का तो आधार नहीं, आयुष्य का भी आधार नहीं, आयुष्य कर्म का भी आधार नहीं। क्यों? कि हमारी आयुष्य अनादि अनंत है, हमारी आयुष्य अनादि अनंत है, इसलिए अज्ञान में मृत्यु का भय होता है, ज्ञानी को कभी मृत्यु का भय होता नहीं। वो अपने स्वरूप को जानते हैं, इसका मतलब यही है कि ये शाश्वत स्वरूप को जानते हैं। जब मैं शाश्वत हूँ और अव्याबाध स्वरूप हूँ, मुझे कोई बाधा भी नहीं कर सकते, और मेरे स्वरूप में जो सुख ज्ञान सुख है, ज्ञान आदि है, वो परिपूर्ण है, फिर चिंता काहे की और विकल्प किसका और फिर भय किसका। और उसमें जब निशंकता है तो शंका भी नहीं होती, तो दुख होने का कोई फिर आसार या अवसर नहीं होगा। ये भिन्न आधार की अपेक्षा नहीं उत्पन्न होती, और ऐसी अपेक्षा नहीं उत्पन्न होने से एक ज्ञान ही एक ज्ञान में ही प्रतिष्ठित है। मेरा ज्ञान मेरा में मेरे में अच्छी तरह रहता है, इसको कोई ले जा सकता नहीं, चुरा जा सकता नहीं, बाधा कर सकता नहीं, उसमें कोई हानि कर सकता नहीं और उसका नाश भी कर सकता नहीं, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा प्रतिष्ठित है, ऐसा अच्छी तरह रहा हुआ है, ऐसा बराबर अनुभव अंश से समझ में आता है, बराबर समझी जाता है। मतलब क्या है कि प्रयोग पूर्वक जो समझता है वो यथार्थ रूप से समझता है, क्योंकि प्रयोग में अपना साक्षात प्रयोग का आधार है, विचार में राग का या विकल्प का आधार है, और इसमें ज्ञान का आधार है। ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान के स्वरूप को, आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, उसको कभी इस विषय में गलती होती नहीं, उसको स्मरण विस्मरण की अपेक्षा चली जाती है, स्मरण नहीं करना पड़ता। स्मरण करे तो वो ज्ञान टिके, विस्मरण में वो ज्ञान का नाश हो जावे, ऐसा भी उसमें नहीं बनता। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान में ही है क्या नहीं। और अतः ऐसा समझने वाले को, बराबर जो समझता है ऐसा समझने वाले को पर आधार आधेपना भाषित नहीं होता। क्या समझने के का क्या अर्थ किया कि उसको भासित नहीं होता, लगता नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगता उसको कि मैं किसी दूसरे के आधार से मेरा अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व अनादि अनंत किसी दूसरे के आधार से नहीं है, ऐसा उसको भासित होता है तो किसी भी प्रकार की दीनता उसको नहीं रहती, नहीं होती। ये भाषित शब्द लिया है यहाँ पर, वो प्रतिभाति ऐसा शब्द लिया है। तद प्रभवे एकम ज्ञानम एव एकस्मिन् ज्ञान एव प्रतिष्ठितम् विभावयतो न पर आधार आधेयत्वम् प्रतिभाति, ऐसा लिया है। आधार आधेय का पर का आधार आधेय का प्रतिभास ही नहीं आता है, ऐसा लगता ही नहीं है कि मुझे किसी का आधार मिले तो ठीक है, आधार नहीं मिले तो मैं दुखी हो जाऊंगा। भाई उसका कभी पर आधार का उसका जो भय है वो चला जाता है। देखिए, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी सत्ताएं हैं वो किसके आधार से हैं? डेमोक्रेसी में तो वोट देने वाले के आधार से होती है। कितनी दीनता आती है उन लोगों को, क्योंकि वो नेता को दूसरा उनको टेका देवे तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ सकता है, अगर दूसरा उनको टेका नहीं देवे तो फिर उनकी तो कोई कीमत ही संसार में नहीं रहती। तो उन्होंने मान लिया है ऐसा कि दूसरा का सपोर्ट, दूसरा का टेका मुझे चाहिए। ये ऊपर से लेकर हर क्षेत्र में ये हालत बनी रही है। एक ज्ञानियों को किसी की परवाह होती ही नहीं, अपना स्वरूप की इतनी महानता उनको भासित होती है कि दूसरे किसी के पास वो दीनता में नहीं आते, दीनता में रहते ही नहीं और दिन परिणाम में वो नहीं आ जाते कभी। ऐसी अपनी महानता में वो हमेशा, भले ही उनको दूसरा कोई मान नहीं देवे, जाने नहीं, पहचाने नहीं, कोई आवश्यकता उनको नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षा होती है उनको सभी प्रकार की तकलीफ होती है। जिनको अपेक्षा नहीं है उनको कौन सी तकलीफ है? एक हमारे भारत में अध्यात्म विद्या है तो अन्य मत में भी ऐसी खुमारी तो लोगों को रही है। ये स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण को गए थे अमेरिका में, तो कोई समुद्र के किनारे अपने हाथ इधर रख करके सोए हुए थे अपनी मस्ती में। आत्मज्ञान तो नहीं है फिर भी देखो, फिर इनकी कोई प्रसिद्धि हो गई होगी। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बुलाया उनको, तो व्हाइट हाउस उसको वहाँ जो संदेश वहाँ के वो आए कि आपको व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, निमंत्रण भेजा है आपने, आप पधारिए। तो क्या बोलता है कि अभी मुझे आने का कोई विचार नहीं है, बोल देना। क्या बोला? अभी मैं इधर मेरी मस्ती में पड़ा हूँ, मुझे व्हाइट हाउस में अभी नहीं आना है, जाओ। वो दरकार नहीं करता, बड़े से बड़े आदमी का वो दरकार नहीं करता है। राजा है, प्रेसिडेंट है, उसके पास बहुत सत्ता है, इसलिए हमें इनकी मानना चाहिए, ऐसी कोई बात इनकी इसके दिमाग में नहीं रहती। तो जिसको आत्मज्ञान होता है उसको अपना आत्मा कैसा भासित होता है कि मैं ही तीन लोक का नाथ तो मैं ही हूँ, तीन लोक का स्वामी मैं हूँ। फिर दिन तक किसकी होवे? उनको तो इसकी धुन चढ़ जाती है। गुरुदेव के शब्द में बहुत अच्छी बातें ऐसे आई है प्रयोग की बात चली है वहाँ। ये वचनामृत है परमागम सार में 304 नंबर का, कि इस बात को प्रयोग में लाने के लिए, इस वस्तु को प्रयोग में लाने के लिए, क्या बोले, विचार करने की बात नहीं किया, इस वस्तु प्रयोग में लाने के लिए अंदर मूल में से पुरुषार्थ का इस तरह उपाड़ आना चाहिए कि मैं ऐसा महान पदार्थ हूं, कैसा, मैं ऐसा महान पदार्थ, ऐसा निरालंबन पने, किसी के आधार बिना, देखो आधार आधे वाली बात है कि नहीं है, ऐसे निरालंबन रूप से किसी के आधार बिना अदर से, मैंने किसी का आलंबन नहीं लेकर के, विकल्प का नहीं, शुभ राग का भी नहीं, पूर्व पर्याय का भी नहीं, वर्तमान का अदर से विचार की परिणमन में, विचार के मैंने परिणमन में धुन चलते चलते ऐसा रस आ जावे कि इसके बाहर आना जचे ही नहीं। काठियावाड़ी शब्द है, बाहर आऊ गोठे नहीं, जचे ही नहीं। भले अभी तो विकल्प है दशा में, अभी विकल्प है, ये विकल्प वालों की बात लिया है, मुमुक्षों को कैसा होना चाहिए भाव वासन के बाद, कि इतना महान पदार्थ अपना स्वरूप भाषित होता है कि इसकी धुन चढ़ जावे, कहीं भी दिनता नहीं होवे, किसी के आधार बुद्धि नहीं रहे, और अभी विकल्प है फिर भी ऐसा लगे कि मैं ये हूँ ऐसा हूँ, ऐसा स्वरूप महिमा का घोलन और जोर चलते चलते निर्विकल्प स्वरूप के प्रति इतना रस से घोलन चले, इतना रस से परिणमन चले, महिमा चले, कि विकल्प छूट करके एकदम अंदर में उतर जाते हैं, विकल्प मिट जाता है, उत्पन्न ही नहीं होता, और एकदम अपने असंख्य प्रदेश में, पूरा क्षेत्र में व्याप व्यापक होकर के प्रसर जाता है उपयोग। ऐसे निर्विकल्प होने के पहले इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होती है, ये पूर्व पर्याय का यथार्थ भूमिका जो है स्वरूप प्राप्ति में निर्विकल्प दशा पहले की, इसका वर्णन 304 वचनामृत में गुरुदेव ने किया है। आधार नहीं आता है, बोले तो भगवान की भक्ति करे तो भी बोले कि आप एक ही मेरे आधार हो प्रभु, विश्व में मेरा कोई आधार नहीं, ऐसे सत्पुरुष की भक्ति करे तो बोल सकते हैं, लेकिन अंदर में समझ बराबर है कि मेरा पुरुषार्थ कार्य मुझे ही करना है। कुछ बहन श्री के वचनामृत में वो बात आई है, वो पात्रता के लक्षण में आई है, कि पात्र जीव को अत्यंत अत्यंत अपने गुरु के प्रति भक्ति होने के बावजूद भी वो अच्छी तरह जानता है कि मेरा कार्य मुझे ही करना है और मुझे ही करना चाहिए, तभी तो उनकी पात्रता है। मुझे वो ले जाएंगे, मुझे वो स्वर्ग में पहुंचाएंगे, मुझे वो मोक्ष में ले जाएंगे, ऐसा सचमुच वो पराधीनता में आता नहीं है, उसी को पात्रता कहिए। पात्र जीव को ऐसा ही रहता है कि वो मुझे मार्ग दिखाते थे, और मैंने मार्ग कभी आगे नहीं देखा था, इसलिए मार्ग दिखाने का भी उपकार है कि जिस उपकार को तोलने के लिए विश्व में कोई पदार्थ है नहीं, इसको अतुल उपकार कहने में आता है। उस उपकार की उपमा भी नहीं मिलने से, क्योंकि उसकी अवेजी में कोई पदार्थ नहीं है, कोई टर्म नहीं है, इसलिए उसको अनुपम उपकार है। ऐसा भी कहने में आता है। तो ये सब होते हुए भी भीतर में बराबर जागृति है कि मेरा कार्य मुझे ही करना है, दूसरा कोई मेरा कार्य करने में मेरे में तो आ सकते नहीं, मेरा कार्य कौन कर सकते हैं, ऐसी बात है। इसमें क्या है कि इस जीव को जगत के पदार्थ का भी अभिमान बहुत है। क्या? जगत के पदार्थों का स्थान का मान का भी अभिमान बहुत है, और इस मान के घोड़े पर से वो नीचे उतर नहीं सकता। तो एक दफे सत्पुरुष के चरण में इसकी चरण रज होकर के जब रहने का उनको भाव आता है तो जगत का सब अभिमान छूट जाता है। तो इस घोड़े पर से नीचे उतारने के लिए ये बात है। जब ये सत्पुरुष के चरण में किंकर होके आता है तब सत्पुरुष कहते हैं कि भैया तू भी जगत का सर्वोत्कृष्ट महान पदार्थ है। ऐसी नम्रता एक बार आती है तो फिर अपनी महानता भाषित होती है, लेकिन जगत के पदार्थ का मान सम्मान में जो फंसा है उसको अपने स्वरूप की महानता कभी प्रतिभाषित नहीं होती। ये एक परिस्थिति है, बीच की एक परिस्थिति है। जैसे घड़ा ऊंधा है वो सलटता है तो बीच में आड़ा होकर सलटता है, वैसे अपनी महानता को देखने वाले को दूसरे जगत के पदार्थ में अहम बुद्धि और अभिमान हुआ है उसको तोड़ने के लिए सत्पुरुष का चरण के रज का परिणाम आ जाता है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे श्री गुरु के आगे मैं तो उनकी चरण रज हूँ, इतनी दीनता आ जाती है। विनय निंदा मैंने, ये विनय है। इतना विनय आने के बाद श्री गुरु जो स्वरूप दिखाते हैं महान स्वरूप, वो महान स्वरूप प्रतिभाषित होने का अवसर आता है। इसके पहले ज्ञान में अपना स्वरूप की महानता प्रतिभाषित नहीं होती, इसलिए वो बात बीच में आती है। यही कारण है कि उस जो घोड़ा पर वो बैठ गया है वहां तो कुछ काम होने वाला नहीं है, तो यहां से कैसे उतारे उनको। ये बीच का प्रोसेस है, तो ऐसा ही बनता है सबों को। बिन सदगुरु को इन भेद ल है, ऐसा भेद मैंने रहस्य। बिन सदगुरु को इन भेद ल है, मुख आगल है कह बात कहे। अपना ही स्वरूप है लेकिन कैसे बतावे। अंतर्मुख होने की विद्या प्रत्यक्ष सदगुरु के अलावा प्राप्त होने का कोई अवसर नहीं, क्योंकि ग्रंथों में वो बात लिख सकते नहीं, वो बात ग्रंथों में शब्दों में आ सकती नहीं। इसलिए सीधा ग्रंथ में से, आगम में से अगर कोई चाहते हैं कि मिल जाए तो उसको भी एक नया भ्रम पैदा हो गया है, ये बात है। इसलिए ज्ञान ही निरपेक्ष रूप से ज्ञान में ही है, क्या भाषित होना चाहिए कि इसलिए ज्ञान ही निरपेक्ष रूप से ज्ञान में ही है और क्रोधादिक क्रोधादिक में ही है, विभाव बिल्कुल अत्यंत मेरे से भिन्न है। तो कितना अत्यंत भिन्न है कि जैसे दो पदार्थ की सत्ता भिन्न है, दो पदार्थ का क्षेत्र मैंने प्रदेश भिन्न है, वैसे ही राग और ज्ञान आपस में भिन्न है, ऐसे लेते हैं। इस प्रकार से ज्ञान का और क्रोधादिक और कर्म नो कर्म का भेद विज्ञान अच्छी तरह सिद्ध हुआ। भेद विज्ञान का जो निरूपण करने का था वो अच्छी तरह निरूपण किया, मैंने प्रयोग पद्धति से ऐसा भेद ज्ञान करवाया, ऐसा लेना है। अंतरंग सूक्ष्म अनुभव दृष्टि से भिन्न ज्ञान का वेदन के आधार से रागादि या क्रोधादि की भिन्नता प्रतिभाषित नहीं होवे तो भेद विज्ञान एक विकल्प और विचार रह जाएगा, और इससे अपना स्वरूप में आने का कोई अवसर होता नहीं। तो भावार्थ कहते हैं कि उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है। उपयोग मैंने उपयोग सामान्य लेना, यहाँ पर उपयोग अनेक ज्ञाकार अनेक ज्ञों को जानने के काल में होता है, इस तरह यहाँ बात समझना नहीं लेना। उपयोग मैंने उपयोग सामान्य, उपयोग में ज्ञाकार विशेष लेना नहीं है यहाँ पर, है? हाँ निराकार लेना, साकार नहीं लेना, लेकिन निराकार लेना। साकार मैंने ज्ञाकार नहीं लेना, ऐसे तो ज्ञान तो साकार ही है, दर्शन निराकार है, वो बात नहीं है इधर। उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से ज्ञान स्वरूप है और क्रोधादिक भाव कर्म नानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि नो कर्म ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम होने से जड़ है, उनको और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। क्या लिखा, क्या कहते हैं कि उपयोग सामान्य ज्ञान मात्र, उपयोग में क्या लेना, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र कहते ही उपयोग से स्वभाव का ग्रहण हो जाता है। ज्ञान मात्र कह करके स्वभाव का ग्रहण होता है, उपयोग मैंने पर्याय का ग्रहण नहीं होता। अब इस विषय में थोड़ा स्पष्टीकरण करना आवश्यक लगता है कि हमारी जो तत्वज्ञान की पढ़ाई है या हम तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं तो हम द्रव्य गुण पर्याय से सब बात को समझते हैं कि भाई कोई भी शब्द आया तो द्रव्य है या गुण है या पर्याय है। सीधा ही हमारा जो विचार है वो तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद पर चला जाता है, लेकिन द्रव्यगुण पर्याय का जो भी भेद विचार है वो अनुभव काल में नहीं रहता है, इसलिए अनुभव के प्रयास में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो ऐसे उपयोग शब्द आएगा, ज्ञान मात्र ऐसा शब्द आएगा, तो वहां इस तरह विचार को नहीं ले जाना है कि ये पर्याय है, ये गुण है, या ये द्रव्य है, क्या चीज है, ऐसा नहीं ले जाना है। क्यों? जब हमें अनुभव करना है इसलिए। पर ये अध्यात्म शास्त्र अनुभव कराने के लिए अनुभव प्रधान शास्त्र है, तो उसमें ऐसे भेद प्रभेद की विचारधारा है उसको बीच में नहीं लानी है। पदार्थ का जो बंधारण है, पदार्थ में क्या व्यवस्था है, ऐसा समझने के लिए द्रव्यगुण पर्याय की बात हमने समझी थी, सीखी थी, लेकिन अनुभव में इसका कोई काम नहीं है। ऐसा भेद प्रभेदों का अभेद अनुभव में कोई काम नहीं है, इसलिए प्रयोजन वशात हमें इस बात, इस तरह से ये बात समझी है, फिर भी हमें छोड़ देने की है। इसके लिए दृष्टांत आता है शास्त्र में कि जैसे हम कोई बहुत अच्छी बढ़िया चीज खरीदने को जाते हैं तो छानबीन करते हैं, जैसे हम मिठाई वाले के पास गए कि सबसे अच्छी से अच्छी मिठाई कौन सी है, आज हमको हमारे बेवाई को भेजनी है, अभाव है 400 रुपया 1 किलो, क्या क्या बोलेगा वो कि 400 रुपया किलो का 40 रुपया वाली बात नहीं है अभी, तो हम छानबीन करेंगे कि भाई इतना ऊंचा दाम है इसका, तो किस चीज की बनी हुई है, तो कि इसमें 500 रुपया किलो वाला पिस्ता डाला है हमने, ये पिस्ता की मिठाई है, क्या कहेगा, लेकिन शक्कर आती है 10 रुपया किलो वाली, इसलिए हमने दाम रखा है 400 का, लेकिन हमने जो पिस्ता खरीदा है वो फॉरेन इम्पोर्टेड आइटम है, बाहर से जो आता है वो 500 रुपया किलो का माल डाला है। तो इसमें घी कैसा है, बोलेंगे कि घी हमने राजस्थान से मंगाया है, जैसलमेर से मंगाया है, जहाँ का भी आता हो अच्छा का अच्छा, ये बताएगा, क्या बताएगा वो कि वहाँ इसका भाव ये है और लाने का खर्च तो इतना लगता है। ऐसे सब बातें जब आएगी बीच में, क्या ये मिठाई खाने के वक्त वो बात बीच में आएगी, क्या खरीदने के काल में ये सब बात बीच में आएगी, तो कैसे बनी है, किस तरह बनी और अच्छे से अच्छे कारीगर से बनाई है, हम कारीगर को भी हमारे बनाने वाले को 200 रुपया पर डे उनको देते हैं, क्या देते हैं, 20 रुपया वाला कोई मजदूर नहीं काम करता है हमारे यहाँ, ये बनाने वाला भी 200 रुपया लेता है हर हमेशा हमारे पास है। ऐसे ऐसे बीच में जो बात आएगी तो ऐसी बात आएगी, तो हमको प्रतीति होगी कि ठीक है, जब तो उनको 400 रुपया किलो का देना चाहिए, लेकिन जब ये मिठाई हम खाएंगे, मेहमान आएंगे साथ में खाने को बैठेंगे, तो क्या हम बीच में वो बात करेंगे कि इसमें क्या डाला है, कितना डाला है, उसमें केसर डाला है, 250 रुपया 1 तोला जिसका केसर का दाम है वो भी इसमें डाला है, कि 1 तोला का जिसमें 250 रुपया 300 रुपया लगता है, 500 जो भी लगता, वो जो भी भाव हो, लेकिन ऐसा किस कीमती चीज है, ऐसा मसाला तेजाना जो भी बात है वो खरीद के काल में होती है, खाने के काल में नहीं होती। ऐसे द्रव गुण पर्याय पदार्थ को पहचान करने के काल में समझना आवश्यक है, लेकिन पदार्थ का आनंद लेना है आत्मा का, तब द्रव गुण पर्याय का विचार है वो आनंद में बाधक होता है, साधक नहीं होता। वो नए चक्र में उसकी गाथा है 266 नंबर की, वो अनुभव के पद्धति का विचार वर्णन करते टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में वो बात लिखा है कि जब हम पहचान करते हैं या अन्वेषण काल उसको बताया है, सच्चे अन्वेषण काले युक्ति मग्गेण युक्ति मार्ग से द्रव गुण पर्याय के युक्ति मार्ग से पदार्थ को पहचाना जाता है। नो आराहण समय, आराधना के काल में नहीं, आराधना के काल में प्रत्यक्ष आत्मा है पक्षको अनवो जम्मा, इसलिए वहां द्रव गुण पर्याय का विचार नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे अनुभव शास्त्र में, अनुभव प्रधान शास्त्र में जब श्री गुरु का प्रयोजन शिष्य को अनुभव की प्राप्ति कराने का है, तब द्रव गुण पर्याय वाला विचार हर हमेशा हर जगह लागू नहीं करना, वरना ये बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आचार्य महाराज ने आत्मा को या भी भेद उड़ाने के लिए और अनुभव करवाने के लिए ज्ञान मात्र ऐसा शब्द रख दिया है, बस सारा समय सार इसमें भर दिया, ज्ञान मात्र कह करके सारा समय सार उसमें भर दिया। तो यहाँ उपयोग सामान्य लिया है, उपयोग तो चैतन्य का परिणमन होने से, ज्ञान स्वरूप है, देखो उपयोग पर्याय स्वरूप है, उपयोग द्रव्य स्वरूप है, उपयोग गुण स्वरूप है, ऐसा कुछ नहीं लिया। चैतन्य का एक परिणमन होने से उपयोग स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और उपयोग ज्ञान स्वरूप है, मैंने अपने आत्मा ज्ञान स्वरूप है उतना लेना है। और जो भी क्रोधादि भाव कर्म अवस्था में है, जो भी ज्ञानावरणादि आठों कर्म का द्रव कर्म का उदय है, और जो शरीर आदि संयोग रूप कर्म फल नो कर्म है, ये सब उद्गल द्रव्य के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। यहाँ पर ये आगम पढ़ने वाले को मुसीबत होती है कि द्रव कर्म को और नो कर्म को तो आप उद्गल के परिणाम और जड़ कहो, लेकिन क्रोधादि भाव कर्म को पुद्गल के परिणाम क्यों कहते हो? ये तो जीव के विकारी परिणाम है। तो कहते हैं कि उनका निषेध करने का प्रयोजन से उनको जड़ कहने में आया है, थोड़ा भी उसका आदर नहीं है, चाहे वो क्रोधादि तीव्र कषाय हो या शुभ भाव रूप मंद कषाय हो, लेकिन वो जड़ है। मेरा ज्ञान स्वरूप आत्मा के आगे वो जड़ है, इतना जोर से निषेध करते हैं। जड़ है उतना ही नहीं, उसको और ज्ञान को प्रदेश भेद होने से अत्यंत भेद है। देखो क्या बोले, प्रदेश भेद की बात लिया, ये थोड़ा विवादास्पद प्रश्न चला है ना कि प्रदेश भेद है कि नहीं है, कि अध्यात्म में उसको प्रदेश भेद कहने में आता है। आगम में भले ही रागादि परिणाम को प्रदेश भेद नहीं कहने में आता हो, लेकिन अध्यात्म में तो उसको प्रदेश भेद कहने में आता है, उसमें प्रयोजन की सिद्धि की है। ऐसे ही प्रयोजन सिद्ध होता है, ठीक है। समझना चाहिए सब। आत्मा का जो मूल स्वरूप है, जिसका आधार लेने योग्य है, अवलंबन लेने योग्य है, ऐसा जो ज्ञायक परमात्मा, वो अध्यात्म तत्व है। और उसी के अवलंबन से जो अध्यात्म परिणाम शुद्धोपयोग वगैरह होते हैं, उसको भी अध्यात्म कहते हैं। इस दोनों को छोड़ करके जितनी भी सब बात है वो सब आगम में जाती है, ऐसी बात है। ये यही तो कहते हैं, ये तो बात समझनी है कि दोनों आत्मा में होते हैं, फिर भी एक का नाश होता है, एक की मृत्यु होती है, दूसरे का जीवन चालू रहता है। इसलिए दोनों की सत्ता अलग अलग है। एक सत्ता होते तो ऐसा बनता है नहीं, है नहीं, एक काल में ऐसा होता है नहीं। समय काल क्या अभेद होता तो सर्वकाल अभेद रहता। अगर एक सत्ता दोनों की होती तो अनादि अनंत साथ रहना पड़ता उसको। लेकिन भिन्न भिन्न सत्ता है, प्रदेशत्व क्या है, अस्तित्व गुण के पर्याय है वो, तो भिन्न भिन्न सत्ता है, इसलिए एक का नाश होने पर दूसरे का नाश नहीं होता, ऐसी बात है। नहीं आया? हाँ, अध्यात्म दृष्टि से समझना पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि आगम से आगे कुछ, आगम का जो कथन है इससे आगे कुछ बात समझानी है, वो अध्यात्म की है। चार अनुयोग के अपने अपने सिद्धांत हैं, उसको आगम कहते हैं। चारों अनुयोग ये अपने आगम है, जिन आगम की बात चलती है, अन्य दर्शनों के शास्त्रों और आगम की ये बात नहीं है। तो चारों अनुयोग में अध्यात्म भरा हुआ है, रहा हुआ है, और अनुयोग के जो विषयगत सिद्धांत हैं इससे अध्यात्म परे हैं, इससे पर है, इससे अधिक है, ऐसी कोई अध्यात्म की परिस्थिति है। तो चारों अनुयोग के विषयगत जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत के से आगे कुछ बात आएगी जो अध्यात्म की होगी। तो जैसे हमारा द्रव्यानुयोग ऐसा कहता है कि द्रव्य गुण पर्याय समेत एक पदार्थ है, और जीव जो पदार्थ है द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उसकी पर्याय में विकार और अविकार दोनों होता है। जब परिणाम में विकार होता है और पर्याय में अविकार भी होता है, शुद्धि भी होती है, तो दोनों का क्षेत्र एक है, ऐसा हमारा आगम बोलता है। लेकिन अध्यात्म में प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है, कि ये विकारी परिणमन पर्याय में होते हुए भी उसका अभाव करने का प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए या प्राप्त करने के लिए ऐसा अध्यात्म तत्व का जोर आए बिना इस मोह की पकड़ में से जीव छूट सकता नहीं है, ऐसी बात है। तो ये प्रयोजन वसात ऐसा वचन परमागमों में आता है, ये आध्यात्मिक वचनामृत है। अध्यात्म में ऐसी बात आएगी, और ऐसी बात अध्यात्म में आने से अध्यात्म विषय वचन अगोचर होने पर भी कुछ अंश में वचन गोचर होता है, कथनचित वचन गोचर यहाँ पर ये होता है, वरना ये वचन गोचर होता नहीं। फिर से ये अध्यात्म का विषय है, ये बहुभाग वचन गोचर है। कथंचित मैंने संकेत मात्र थोड़ा इशारा इसका होता है वचन में, इसलिए उसको कथंचित वचन गोचर कहने में आता है। तो वो कहाँ होता है कि ऐसे अध्यात्म वचन, अध्यात्म भाव है, अध्यात्म के वचन है, उसमें थोड़ा बहुत उसका संकेत मिलता है। श्रीमद जी ने क्या लिखा कि दिगंबर आचार्यों के तीखा वचनों से, ये तीक्ष्ण वचन है, तीखा वचन है। कैसा तीखा वचन है कि शुभ राग का एक कण का प्रदेश मेरे में नहीं है। क्या भले ही कितना भी ऊंचा शुभ राग हो, लेकिन इसका एक प्रदेश मेरे में नहीं है, एक कण मेरे में नहीं है। तो कुछ आशय समझने को मिलता है। क्या लिखा उन्होंने, दिगंबरों का तीखा वचन, तीक्ष्ण वचन जब प्राप्त हुआ तो कुछ आशय समझ में आता है, कुछ रहस्य समझ में आता है। वहां रहस्य शब्द लिखा है कि अब कुछ रहस्य समझ में आता है। श्वेतांबरों की मौलास देखकर सब रस ठंडा हो जाता है। क्या लिखा तो ऐसे आध्यात्मिक वचन, अध्यात्म अनुभव वाले जो महात्माएं हैं, वो महात्मा में इसका अनुभव दिखाने के लिए या अनुभव की विधि में सामने वाले को चढ़ाने के लिए ऐसे तीखे वचन आएंगे जिससे अनुभव का जो रहस्य है वो कथनचित वचन गोचर होता है। तो जो अनादि से उस चीज से अनजान है, उसको कुछ समझने का मौका मिलता है या ऐसे भाव में प्रवेश करने का मौका मिलता है। विरोधाभास नहीं समझने वाले को होता है, सही समझने वाले को नहीं होता है। वैसे तो व्यवहार और निश्चय परस्पर विरुद्ध है, फिर भी नहीं समझने वाले के लिए विरुद्ध है, समझने वाले के लिए वो अविरुद्ध है, ऐसी बात है। तो ये अविरोध कैसे हुए, ये एक रहस्यभूत विषय है। और इस रहस्य को पाने के लिए ऐसे वचनों में कुछ संकेत अध्यात्म शास्त्र में मिलता है, उसको ग्रहण करने के लिए अपनी जिज्ञासा, अपनी भावना और प्रयास होगा। भावना और जिज्ञासा पूर्वक तो कुछ काम होने वाला है, वरना तो ये विरोध जो है, आपस का वचन विरोध है, वो माथा को खराब कर देगा। क्योंकि दोनों तो कहने वाले तो महान पुरुष ही है, कहने वाले तो दोनों महान पुरुष है। हम अगर इसका अविरोध रूप से नहीं समझेंगे तो बात कोई पल्ले पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि वस्तु ऐसी विचित्र है, विचित्र है ना, विरोधी स्वभाव वाली है, विरोधी धर्म वाली है, नित्य भी है और अनित्य भी है, शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है, एक रूप भी है और अनेक रूप भी है। क्या करेंगे, दोनों परस्पर सब विरुद्ध बातें हैं। तो उसका विरोध मिटाने का जो तरीका है, ये जहाँ तक हमें प्राप्त नहीं हुए, तो उसमें तो कोई आगे बढ़ने का सवाल नहीं रहता है। विरोध नहीं है, आप नहीं समझे वहां तक विरोध दिखता है, वचन विरोध दिखता है। जहां तक हम नहीं समझे वहां तक हमें वचन विरोध दिखता है। कि कैसे बात करते हैं, एक जगह ऐसी बात आती है, दूसरी जगह ऐसी। कल रात्रि को स्वाध्याय में ये प्रश्न चला था कि वो कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी हैं, वो अपने लिए ऐसे कहते हैं कि मैं तो संत कोई चरण रज हूँ, मेरी कोई ऐसी अलौकिक दशा नहीं है, आप मुझे इतना मान सम्मान देकर के बंधन मत करिए। 212 पत्र में और 680 वाले पत्र में कहते हैं कि मैं इस काल का महावीर हूँ, 25वां तीर्थंकर हूँ, इस काल का दूसरा श्री राम हूँ, मुमुक्षुओं के लिए कल्प वृक्ष हूँ और भूतकाल के महावीर को ढूंढने का अभिप्राय छोड़ करके ये वर्तमान के महावीर के शरण में तुम आ जाओ, तुम निर्भय हो जाओगे। इतना इतना लिखा है, अब देखिए कितना वचन विरोध आता है। हाँ,